Hare Krishna, the lecture on glories of Kartik month, Damodar month, given on 28th October 2015 in Faridabad Sector 9 by myself, Prashant Mukund Das.
सिंहासनस्थे श्रीमात् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठरभि सेव्यमानं स्मरामि मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरं यत्कृपातं हं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं हरे कृष्ण। तो ये जो महीना है इसको क्या बोला जाता है? कार्तिक। और इस महीने में एक और नाम है दामोदर। वैष्णव लोग इसको दामोदर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको कार्तिक के नाम से जानते हैं, लेकिन क्यों नाम पड़ा ये लोग जानते नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमसे कोई पूछ रहा था, अरे आपके इस्कॉन में क्या आपने भगवान कृष्ण को खरीद लिया? आप लोग बोलते हैं आइए आइए कृष्ण भगवान का, हम कृष्ण भगवान का दर्शन कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। बाकी मंदिरों में हाँ क्या कृष्ण भगवान नहीं है? एक दिन प्रवचन में कोई प्रश्न पूछ रहे थे मेरे से, तो हमने उनको बोला कि मंदिर में सब जगह भगवान है, कृष्णा इज अवेलेबल एवरीवेयर, सब जगह भगवान है, लेकिन इस्कॉन में और दूसरे मंदिर में क्या डिफरेंस है कि वहां भगवान है यहाँ भी भगवान है, लेकिन वहां भगवान दिखाने वाला कोई नहीं है, यहाँ दिखाने वाले लोग नहीं है। तो भगवान जो है उनको दर्शन किया जाता है ना, हम दर्शन करते हैं भगवान का, मंदिर में जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दर्शन जो शब्द है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजन, आईज का होता है दर्शन, शास्त्र, दर्शन शास्त्र सुना होगा, क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने जीवन में कृष्ण नाम की फिलॉसफी को समझा है वो व्यक्ति दर्शन कर सकता है। देखे तो महाभारत के समय में शिशुपाल कंस आदि लोगों ने भी भगवान का दर्शन किया, दुर्योधन भी साक्षात भगवान को देख रहे थे। हम जाते मंदिर में विग्रह का दर्शन करने, उसमें जब तक ये पता ना हो कि भगवान मूर्ति के अंदर कैसे विराजमान होते हैं, हम उसे पत्थर ही मानते रहते हैं, तो वो कैसे कृपा कर देगा हमारे ऊपर जब साक्षात भगवान दुर्योधन पर कृपा नहीं कर पाए। भगवान को देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा जीवन में, अगर पड़ता भगवान को देखने से तो उसका जीवन बदल जाना चाहिए। लोग जाते हैं, हम चार धाम यात्रा पे जा रहे हैं, चार धाम यात्रा क्या करने गए? वहां गए, दर्शन किया, बहुत भीड़ थी लेकिन बहुत बढ़िया रहा, 2 मिनट का दर्शन मिला, 2 सेकंड का दर्शन मिला, उस दर्शन से क्या फल मिलने वाला है? कितने लोग दर्शन करने जाते हैं लौट कर फिर वही सिगरेट, शराब, बीड़ी, सिगरेट, नॉन वेजिटेरियन आइटम खाते हैं। अगर दर्शन देखने से अगर डिफरेंस आता तो शिशुपाल भक्त क्यों नहीं बना, दुर्योधन भक्त क्यों नहीं बना, ये प्रश्न उठना चाहिए। इंटेलिजेंट पीपल, जो इंसान है, ह्यूमन शरीर, ये जो है मानव शरीर में है, हमें प्रश्न उठाने चाहिए इस तरह के कि क्यों नहीं बदले वो अगर दर्शन से। आज भी दर्शन का मतलब है कानों से दर्शन करना। जिस व्यक्ति ने कान से भगवान को नहीं सुना वो व्यक्ति कभी जीवन में भगवान को देख ही नहीं पाया। इसीलिए दर्शन शास्त्र का मतलब है फिलॉसफी, फिलॉसफी से दर्शन होता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे वो कहते थे सिंसियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंसियर का मतलब सीन थ्रू ईयर्स, जिसने भगवान को कानों से देखा है, सीन सीन थ्रू ईयर्स, जिसने कानों से भगवान को देखा। जब भगवान के बारे में जानते ही नहीं, कार्तिक महीना क्या है ये जानेंगे ही नहीं तो कैसे उस महीने को जिएंगे कैसे? बहुत सारे लोग सुबह उठकर स्नान करते हैं और बहुत तरह तरह के तपस्या करते हैं कार्तिक महीने में। आप जाकर बोलेंगे ना अभी हम इस्कॉन में आ गए हैं, हमें एक माता जी गाइड करती हैं और हमें प्रभु जी ने बताया कार्तिक महीने की क्या महत्व है, क्या महिमा है, आहा आनंद आ गया, वी विल फॉलो इट, अब हम बदल जाएंगे, एकदम चेंज कर देंगे। तो लोग बोलेंगे इसमें नया क्या है, हम लोग तो सालों साल से कार्तिक महीना निभा रहे हैं, 4 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, लौट कर आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते सोते तपस्या करते हैं। कहते हैं आराधितो यदो विष्णु तपस्यं तथाक्यम्। अगर विष्णु या कृष्ण का नाम कानों के द्वारा श्रवण ही नहीं किया तो फिर कितनी भी तपस्या करो बेकार चली जाती है। ना आराधितो तप यदि विष्णु तपस्यं तथाक्यम्। अगर भगवान की अगर तप भगवान का नाम नहीं लिया तो फिर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। और अगर तपस्या तब फल देती है जब व्यक्ति तपस्या के साथ में श्रवण करता है भगवान के गुणों के बारे में, लीला के बारे में और भगवान के नाम के बारे में। इसीलिए ये जो महीना है इसमें हमें भगवान के नामों का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि भगवान को कैसे देखा जा सकता है? कानों से। इसलिए हमें इस जो ये फेस्टिवल होता है आपका संडे या वेंसडे एसोसिएशन, इसको बोलते हैं श्रवण उत्सव। आपसे कोई पूछे ना कहाँ जा रहे हैं, तो जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं क्लास में जा रहे हैं, लेक्चर में जा रहे हैं, प्रवचन में जा रहे हैं, लेकिन हमें बोलना चाहिए हम जा रहे हैं फेस्टिवल में। कौन से फेस्टिवल में? श्रवणम। हाँ, इसे श्रवण उत्सव कहना चाहिए। और उत्सव के कारण जीवन में उत्साह एंथुसियाज्म बढ़ जाता है भक्ति करने का। इसीलिए ज्यादा ज्यादा एसोसिएशन करना चाहिए, कोई क्लास मिस नहीं करना चाहिए। जितना सुनेंगे भगवान के बारे में उतना प्रगाढ़ हो जाएगा प्रेम। फिल्म स्टार लोगों को इतने पसंद है इसलिए उनके बारे में हर टाइम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आज इन्होंने ये किया, आज इन्होंने ये किया। उनकी झूठी ग्लोरी सुन सुनकर हम बचपन से बुढ़ापे तक उनसे प्रेम करने लगते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में जानते नहीं, सुनते हैं, इसलिए उनसे कभी प्रेम कर नहीं पाए। जितनी अगर उनसे प्रेम करना चाहते हैं तो उनके बारे में सुनना पड़ेगा। आज हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, इस महिमा के बारे में सुनेंगे। तो दामोदर जो महीना है इसमें दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। तो जब भगवान कृष्ण के पेट को किसने बांधा? यशोदा मैया ने बांधा, तो इस महीने का नाम पड़ गया दामोदर महीना। दामोदर मास इसको कहते हैं। तो इस महीने की बहुत ग्लोरीज है। कृष्ण भगवान उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति राधा रानी को प्रसन्न करता है, और राधा रानी अत्यंत दयालु है। कृष्ण भगवान दयालु है या राधा रानी दयालु है? घर में प्रभु जी ज्यादा दयालु होते हैं, माता जी ज्यादा दयालु होते हैं? और प्रभु जी से पूछो पता चलेगा कौन ज्यादा दयालु है। प्रभु जी ये घर मुझे पता है शादी तो रहने के लिए कौन दयालु तो जो दयालु है वो माता दयालु होती है, और राधा रानी इतनी दयालु है कि एक बार राधा रानी वृंदावन में नंदगांव में आती है, और नंदगांव में आकर देखती है कि नंद बाबा के घर में बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई लोगों की, और लोग भिक्षा मांग रहे हैं। तो कृष्ण भगवान खड़े हैं और अपने बाबा से कह रहे हैं, हे बाबा नंद बाबा देखो देखो कितने लोग आ गए आज भिक्षा मांगने के लिए हमारे दर पे, कृपालु हम भी तो जाते हैं भिक्षा मांगने। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया सब मांगते हैं, ठाकुर जी हाथ जोड़ के, लक्ष्मी जी नारायण दिवाली पे सब मांगते हैं हाथ जोड़, कुछ तो दे दो कृपा कर दो। कृपा का मतलब है करो और पाओ, कर पाओ तो कृपा। तो लोग पहुंच गए नंद बाबा के घर में कृपा मांगने के लिए, और कृष्ण भगवान ने कहा जो जो अपना पात्र लेकर आए हैं उन पर कृपा मिलेगी, जो पात्र लेके नहीं आए उनको कृपा। तो राधा रानी को ये चीज अच्छी नहीं लगी। राधा रानी कहा कि जो पात्र लेके नहीं आया उस व्यक्ति को पात्र देना चाहिए। अभी जैसे आप लोग आए हैं और अपनी प्लेट घर से लेके नहीं आए तो हम आपको प्रसाद ना दें, ये सही है? गलत। वो तो बोलते हैं अपनी प्लेट लेके आओ तब प्रसाद मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं प्लेट दे देते हैं। क्या आप प्लेट भी लीजिए, प्रसाद भी लीजिए, कथा भी लीजिए, खुश रहिए। तो इस तरह की कृपा राधा रानी करती हैं। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि ये तो अजीब सिस्टम है, जो पात्र लेके नहीं आया उस व्यक्ति को कृपा नहीं मिलती है। तो राधा रानी जब बरसाना जाती है तो अपने पिताजी वृषभानु महाराज से कहती है कि हे वृषभानु महाराज, मेरे पिताजी नंद बाबा के घर में एक प्रॉब्लम है, वहां पर कृपा उसी को मिलती है जिसका पात्र होता है, लेकिन हम अपने घर में जब भिक्षा प्रदान करेंगे, लोगों को दान देंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी को ये नहीं चेक करेंगे किसी के पास पात्र है। तो पात्र को अगर इंग्लिश में देखें तो पात्र का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब होता है ना इसका कुपात्र या सुपात्र, पात्र मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो हमने अपने जीवन में जब अपने चरित्र को भक्ति में जीवन बना लेंगे भक्त का, सुबह उठकर जप करना, शास्त्र पढ़ना, चार चीजों को छोड़ना, चार चीजों को अपनाना, तब कृष्ण भगवान कृपा करते हैं। कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। डरो मत, पहले मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने पहले क्राइटेरिया कह दिया मेरी, उसके बाद कृपा मिलेगी। लेकिन राजा रानी ने आकर वृषभानु महाराज को बोला कि जिसके पास पात्रता नहीं भी है उसको मैं कृपा प्रदान करना चाहती हूँ। जो खाली आ जाए ना उसको पहले पात्र देंगे, उसके बाद कृपा देंगे। इसी के कारण जब कलयुग आता है तो कलयुग में राधा रानी एक अवतार लेती हैं, कृष्ण भगवान एक अवतार लेते हैं जिसमें वो राधा रानी के भाव को लेकर आते हैं। कौन सा अवतार है? चैतन्य महाप्रभु का। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत में आता है, पात्र पात्र विचार नाही नाही स्थान स्थाने, जहां देखे कृष्ण भक्त करे प्रेम दाने। जहां कृष्ण भक्त देखा वहीं पर उसको दान कर दिया, प्रेम दान कर दिया। जिसकी थोड़ी सी भी इच्छा है ठाकुर जी की सेवा करने की, उसको कृपा मिलती है राधा रानी, क्योंकि राधा रानी ही चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि कृष्ण भगवान राधा रानी का भाव लेके आए। तो राधा रानी भी पात्र विचार नहीं करती, कैरेक्टर अच्छा है या गलत है, सही है या गलत है, बस इसने क्या किया, कृष्ण भगवान की पूजा करने की अभिलाषा इच्छा उत्पन्न कर ली, बस यही इनफ है, और कोई तपस्या करने की आवश्यकता है। तो राधा रानी ने इस महीने में डिस्काउंट दे दिया, सेल सेल सेल, बोनंजा ऑफर अभी लगा हुआ पूरा चारों तरफ। तथा प्लान करते हैं फ्रिज कब खरीदेंगे, दिवाली में, एसी कब खरीदेंगे, दिवाली में, माइक्रोवेव कब खरीदेंगे, दिवाली में। तो ऐसे ही इस महीने में भक्ति को आराम से अर्जित किया जा सकता है। कहते हैं कोई मजाक मजाक में भी भक्ति कर लेना, मजाक मजाक में क्या हो रहा है, अरे पता नहीं 9 सेक्टर में 324 नंबर में क्या होता रहता है, चलो हम भी दिखाते हैं मजाक मजाक में। आगे मजाक मजाक में थोड़ी सी भी कथा सुन ली, दीप दान कर दिया, कृपा भरपूर। पात्र पात्र विचार नहीं नहीं स्थान स्थान है, फरीदाबाद है या वृंदावन है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भक्त है या अभक्त है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आकर उसने दीप दान कर दिया, कथा सुन ली, थोड़ा सा भगवान की सेवा कर दी, तो डिस्काउंट पूरी भक्ति आपको प्राप्त हो सकती है, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है। तो ये जो महीना है एकादशी से शुरू होकर एकादशी पे खत्म करते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव भक्त इसको पूर्णमासी से शुरू करके पूर्णमासी पे खत्म करते हैं। तो अभी कल शरद पूर्णिमा थी और माता जी ने स्पेशली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि अगले संडे तब जाते जाते तो 15 दिन गुजर जाएंगे और भक्तों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कार्तिक की क्या महिमा है। तो आज प्रथम दिवस है कार्तिक का प्रतिपदा, और आज से पूरे 30 दिन 29 दिन आपके पास बाकी हैं। जिन लोगों ने नहीं शुरू किया उन्हें शुरू कर देना चाहिए, डिस्काउंटेड बोनेंजा ऑफर मिल रहा है। और डिस्काउंट में क्या होता है, कुछ देना पड़ता है, यहाँ कुछ भी नहीं देना पड़ता, दीप भी यहीं पे मिलते हैं, कथा भी यहाँ मिलती है, प्रसाद मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कृपा बटोर के घर ले जाओ। तो ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसी कोई कंपनी नहीं है मार्केट में पूरे वर्ल्ड में जो फ्री ऑफ कॉस्ट कृपा दे रही हो। कुछ मांगते हैं लेकिन यहाँ कुछ नहीं मांगते, यहाँ पर सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या, टाइम नहीं, श्रद्धा, फेथ। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, पहले श्रद्धा लाओ उसके बाद कृपा मिलती है, बस श्रद्धा थोड़ी सी फेथ इतना काफी कर लेंगे तो भगवान कृपा करते हैं। तो बताते हैं कार्तिक के महीने में कुछ हमें पहले प्लान करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं जब शरद पूर्णिमा होती है जो कल थी, उस दिन भगवान रास यात्रा करते हैं, अपनी रास लीला करते हैं, और उस दिन से लोग व्रत लेते हैं कि अब हम एक महीने तक कुछ चीजों को पालन करेंगे, थोड़ा सा भी कर लेंगे। स्वल्पम अपियस्य धर्मस्य त्रायो तो महतो भयात्, महान भय से भगवान तार देंगे अगर थोड़ा सा भी इस महीने में कर दिया, क्योंकि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी कौन है, राधा रानी। तो राधा रानी पात्र विचार नहीं कर रही है, वो कह रही है बस थोड़ा सा करो और पूरी भरपेट कृपा ले जाओ। तो उसके लिए अभी कुछ लोग आदिवास या फिर संकल्प लेते हैं, संकल्प में जैसे बोलते हैं कार्तिक अहम करिष्यामि, मैं क्या करूंगा, कार्तिक करूंगा, इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन, हे जनार्दन मैं सुबह उठकर स्नान करूंगा। तो इस महीने में सबसे ज्यादा ग्लोरी है सुबह उठकर स्नान करना, लेकिन स्नान कर बच्चों का टिफिन बॉक्स पैक करना या कुत्ता घुमाने ले जाना नहीं है, सुबह उठकर भगवान का जप करना है, आरती करनी है, तो फिर वो एक्चुअली प्रातः स्नान का फल मिलता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग उठते हैं सुबह 5 बजे, उनसे पूछो करते क्या है, कुत्ता घुमाने लेके जाते हैं या फिर बच्चों का टिफिन बॉक्स बनाते हैं, बस के लिए वेट करते हैं सड़क पे खड़े होकर, लेकिन ठाकुर जी का वेट कोई नहीं कर रहा, इसलिए ठाकुर जी कभी आते भी नहीं है। अगर आप उनका वेट करेंगे तो आएंगे।
तो उसमें कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्रीति अर्थम तव देवेश। हे देवेश, देवों के ईश्वर, देवता बहुत है लेकिन ईश्वर एक है कृष्ण। प्रीति अर्थम तव देवेश दामोदर मया सहा। हे दामोदर, आपको यशोदा मैया ने आपके पेट में रस्सी बांधी और प्रेम पूर्वक आपको बांध लिया, तो हम भी चाहते हैं हम अपने जीवन में आपको अपने हृदय में बांध लें। उसको बांधने के लिए हमें क्या करना है? प्रातः स्नानम, सुबह उठकर क्या करना है? स्नान। तो लोग प्रश्न पूछते हैं, ठंडे पानी से गर्म पानी से? तो किससे नहाएंगे? तो भक्ति भी फिर कैसी रहती है? मिश्रित भक्ति, मिक्स्ड भक्ति। अब प्रयास करना चाहिए ठंडे पानी से। कहते हैं ठंडे पानी से स्नान करने से 1000 times ज्यादा कृपा मिलती है बजाय गर्म पानी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका शरीर अगर अस्वस्थ है और आप ठंडे पानी से नहा के गोलोक धाम प्रवेश कर जाते हैं, उससे बेटर है कि आप जो है नहाए लेकिन गर्म से नहा लें, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं कि आपका स्वस्थ शरीर है, आप कर सकते हैं लेकिन आलस वस या फिर ठंड के कारण आप जो है ठंडे पानी से नहीं नहा रहे हैं। अगर नहा सकते हैं तो ट्राई करना चाहिए जितने दिन कर सकते हैं। तो फिर इसमें 5 चीजें करने के लिए बताई गई हैं इस महीने में, तो उन चीजों का हम वर्णन करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि दामोदर महीना में क्या लीला भगवान ने करी है। अनंत लीलाएं करी है इस महीने में भगवान ने, अनंत लीलाएं। इस महीने को बोलते हैं फुल ऑफ फेस्टिवल्स, उत्सवों का महीना। अभी शुरू हो जाता है, इतने सारे इसमें उत्सव आते हैं जैसे गोवर्धन पूजा, बहुलाष्टमी, राधा कुंड प्रगट दिवस, गोपाष्टमी, दीपावली पूजन, लक्ष्मी पूजन, मुरारी गुप्त तिरुभाव दिवस, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, अनगिनत फेस्टिवल, भैया दूज, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं। मतलब उत्साहित रह सकता है भक्त, हर पल पल पर उत्साह रहेगा, आज ये आज ये आज ये, तो कभी आलस नहीं आएगा उसको। तो इस महीने में जो दामोदर महीना है इसमें क्या हुआ कि एक दिन नंद भवन में भगवान बैठे थे, कृष्ण भगवान और उनकी जो मैया थी, उनके घर में बहुत सारी गायें थी। कितनी गाय थी? गाय, काउज। कितनी गाय थी उनके घर में? 9 लाख। कितनी? 9 लाख। बाप रे बाप, इतनी तो आज किसी मदर डेयरी में नहीं मिलेंगी आपको। किसी डेयरी फार्म में चले जाइए, 9 लाख गाय नहीं मिलती है। 40,000, 20,000 बहुत बड़ी गाय होती है, तो 40,000, 50,000। जब कम होती है 1700, 1800, बहुत छोटी गौशाला में 100, 150 गाय। इसीलिए नंद बाबा जो थे उस पूरे क्षेत्र के राजा थे, महाराज, नंद महाराज बोले जाते थे, क्योंकि उनके पास 9 लाख गाय थी। लेकिन 9 लाख गायों में से 5 गाय जो थी वो स्पेशल गाय थी। तो उनके अंदर बताते हैं कि इस प्रकार की उनका दूध, उनकी घास इस प्रकार की थी कि उनसे जो दूध निकलता था वो इतना सुगंधित होता था, इतना सुगंधित होता था कि उससे बनने वाली मिठाई, उससे बनने वाली खीर, उससे बनने वाली दही, रबड़ी, हर चीज सुगंधित होती थी। तो भगवान के जो पिताजी थे नंद बाबा, उन्होंने अपने घर में बनाया इस प्रकार से सिस्टम था कि ये जो 5 गाय है ये सिर्फ कृष्ण के लिए है। तो उनको बोलते थे पुष्प गंध, उनके जो घास होती थी उस प्रकार से खाती थी, और उन्हीं 5 गायों के दूध से कृष्ण भगवान के लिए यशोदा मैया मक्खन निकालते थे। तो एक बार मैया उनके लिए मक्खन निकाल रही थी और दूध को उन्होंने उबालने के लिए रखा था कि दूध गाढ़ा हो जाएगा, है उबालते हैं तो गाढ़ा होता है और पेस्टराइजेशन, उसमें से सारे कीटाणु निकल जाएंगे और फिर वो कृष्ण को मैं पिलाऊंगी। इतने में कृष्ण भगवान उठ जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैया, मुझे ये दूध नहीं पीना गायों का, मुझे किसका दूध पीना है? आपका। मैं तो यशोदा के प्रेम के कारण तो इस जगह प्रकट हुआ हूं। यशोदा का मतलब है यश का उदय, इसलिए यशोदा बोलने से हमारे भी यश का उदय हो जाता है। इसलिए हमें यशोदा दामोदर की पूजा करनी चाहिए इस महीने में। यशोदा, हम इनके यश इसीलिए उदय हुआ क्योंकि भगवान ने वात्सल्य के कारण उनके घर में जन्म लिया। भगवान से कई रसों में हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। सखा भाव में अर्जुन आए, दास भाव में अब जैसे हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, सुदामा आते हैं। तो इस प्रकार से जो यशोदा मैया है उनका भाव क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता क्या है? वत्स, वत्स जानते हैं, गाय के बछड़े को वत्स बोलते हैं। और जो गाय है वो अपने वत्स, अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है कि जब वो पैदा होता है ना, खून लगा होता है उसके शरीर पे, तो चाट चाट कर उसको साफ करती है, खड़ा कराती है। इसी तरह कृष्ण भक्त वत्सल है क्योंकि वो अपने जो हम है ना, पूरे खून में पड़े हुए हैं, इस संसार में सड़ रहे हैं, हमें भगवान गोदी में हमें चाट चाट के अपने तक बुलाने के लिए खड़ा करते हैं, चलो आओ मेरी भक्ति करो। हम थोड़ा सा भी श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे लिए पूरा गाय की तरह हमें चाट चाट कर दूध भी पिलाएंगे, चाटेंगे भी, तैयार करेंगे, दो पैर पे खड़ा करेंगे कि ये भक्त, एक भक्त मेरे धाम आ जाए। तो मैं आया हूँ यहाँ यशोदा मैया तुम्हारे स्तन से दूध पीने के लिए, गायों का दूध पीने नहीं आया। तो मैया कहती है अच्छा ठीक है लाला परेशान मत हो, तो उठाकर अपनी गोदी में ले जाने और पिलाने लगती है अपने स्तन का दूध। तो स्तन का दूध पी रहे हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं में एक चीज बड़ी विचित्र है, हर एक चीज बोलती है, चिन्मय वस्तु, चाहे कपड़ा हो पीत वस्त्र, चाहे वो भगवान का मुकुट हो, चाहे मोर पंख हो, चाहे दूध हो, चाहे पीड़ा हो जिसमें बैठते हैं, चाहे वो पलना हो, हर चीज बोलती है, भगवान की हर चीज चिन्मय वस्तु है। तो जो दूध था वो उबलने लगा और उबल उबल के क्या कहने लगा कि मैं जीवन में फायदा ही किया मेरे जीवन का जब मैं कृष्ण के मुख में सेवा नहीं कर पाऊं। ऐसे हमें भी सोचना चाहिए, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नहीं। मैंने मनुष्य जन्म पाया लेकिन राधा कृष्ण की सेवा नहीं करी तो जान बूझ कर क्या खा लिया, तो जान बूझ कर, अनजाने में तो सभी खा रहे हैं लेकिन जान बूझ कर वो खाता है जो इस कौन में आने के बाद में, संस्था से जुड़ने के बाद में, जानने के बाद भी कि ईश्वरम परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादर आदर गोविंदम सर्व कारण कारणम, सारे कारण के कारण वो है फिर भी इधर उधर घूम जाता है, तो वो जान बूझ कर विष खाई हूं, विष खाता है। तो यशोदा मैया का जो दूध था वो बोला मैं नहीं रहूंगा, मैं सेवा नहीं करने का फायदा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो उबल रहा है। तो देखिए उबलने के पीछे भी आचार्यगण कितना सुंदर हम वर्णन करते हैं कि वो दूध क्यों उफन रहा है, क्योंकि वो सेवा में लग नहीं पाया इसलिए वो कूद रहा है। और जब वो कूद जाता है तो यशोदा मैया सोचती है अरे दूध उबल रहा है, तो वो काना को साइड में डाल देती है और दूध को उठाने चली जाती है। तो कृष्ण को बहुत क्रोध आता है, क्या क्रोध आता है कि मैया के लिए तो मैं इस जन्म में आया हूँ कृष्ण बनकर, भगवान साधुओं के लिए आते हैं राक्षसों के लिए नहीं आते हैं, परित्राण है साधु नाम बाद में विनाशाय च दुष्कृतम, वरना दुष्टों को मारने के लिए तो भगवान अपने किसी पार्षद को भेजेंगे ना वो भी मार सकता है। भगवान तो आते हैं वात्सल्य लीलाएं करने, रास लीला करने, भक्तों को प्रेम आनंद प्रदान करने के लिए, है ना। तो इसलिए जब आए वात्सल्य लीला करने के लिए यशोदा मैया के, तो उनको बहुत क्रोध आया, बोले इस दूध के चक्कर में मेरे को मैया ने अपनी गोदी से हटा दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जितनी भी मटकियां टंगी है ना इन सबको तोड़ दूंगा। और उन्होंने डंडा लिया अपने हाथ में और बोले मैया तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया ना, अब मैं ये मटकी फोड़ दूंगा। तो मैया बोलेंगे नहीं नहीं लाला ये काम मत करना, मटकी मत फोड़ना, ये मैंने तेरे डिनर आफ्टरनून लंच ब्रेकफास्ट सबका बना के रखा है, मक्खन दही मिश्री बहुत आनंद चीजें तेरे लिए बना के रखी है, मत तोड़ना। मैं तो बोले नहीं नहीं मैया तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया ना, अब मैं क्रोध में हूँ और अब मैं तोड़ दूंगा। नहीं नहीं लाला तोड़ना मैं तोड़ दूंगा, और उठा के डंडा क्रोध गया, जब मटकी को तोड़ा तो भैया को बहुत क्रोध आया, बोले अच्छा अभी सब लोग बोलते थे कि कृष्णा ऐसे करते हैं हमारे घर में मटकी तोड़ते हैं मक्खन चुराते हैं, अब तो तू ऐसा हो गया कि तू अपने घर की मटकियां भी तोड़ने लगा, तो बहुत तुमको गुस्सा आया। तो मैया ने कहा आज मैं लाला तुझे क्या करूंगी, छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुझे पिटाई करूंगी। तो फिर मैया वही डंडा जिससे वो कृष्ण भगवान ने तोड़ा और उसको लेके कृष्ण भगवान के पीछे भागती है, और कृष्ण भगवान भी भाग रहे हैं। तो भगवान के घर में दो गेट होते थे, पहला गेट जो आगे का द्वार होता है जहां से पुरुष आते हैं, और एक पीछे का द्वार होता था जहां से महिलाएं प्रवेश करती हैं, क्योंकि उस जमाने में द्वापर युग में क्या भी कुछ वर्ष पूर्व भी लोग घूंघट करती थी औरतें, है ना, उस द्वार पे नहीं आती थी जहां पुरुष आदि लोग होते थे। तो वो उस जगह नहीं, भगवान जानबूझ कर उस गेट पे भागे आगे की तरफ जहां पर पुरुष आते जाते ताकि मैया पीछे नहीं आएंगे, लेकिन सुबह का वक्त था तो सुबह सुबह इतनी जल्दी कोई आता नहीं है, तो भगवान मैया ने देखा कोई पुरुष तो नहीं है और फिर उसी रास्ते में भाग मिले। और बिल्कुल रोड जैसे आती है ना नंदगांव, अभी कभी जाएं आप तो आपको देखेंगे गोकुल में एक्चुअली लीला हुई है, तो गोकुल में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक यमुना के किनारे एक एंट्रेंस गेट है और बिल्कुल बैक साइड पड़ती है बहुत पीछे जाकर, अभी तो टूट गया पूरा रास्ता, महावन के अंदर है गोकुल, तो उखल बंधन लीला बिल्कुल घर के बाहर हुई है एंट्री साइड में। तो वो भागने लगे और बिल्कुल बाहर की तरफ आ गए, अभी मैया पीछे पीछे हाथ में डंडा लेके भाग रही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। और बिल्कुल जब पास आ गई ना तो कृष्ण रोने लग गए जोर जोर से डर के कारण, और उनकी आंखों में काजल लगा हुआ है और वो काजल उनके एक गाल के ऊपर बिखरने लगा। तो कहते हैं कृष्ण भगवान का कलर क्या है? काला, कोई बोलता है ब्लू, श्याम वर्ण है कृष्ण। अभी श्याम वर्ण या सांवले रंग के कृष्ण के ऊपर काला काला काजल अगर आंखों में गिर जाए, गोरे व्यक्ति के गिर जाता है तो भी गुंडा लगता है बच्चा। हाँ, फादर बोलता है मदर से, पिता अपनी पत्नी से बोलता है, माता से कि देखो तुमने बच्चे का क्या हालत कर दिया है, इसको मिलाओ धुलाओ, आंखों में काला काला सारा गिर रहा है, फेस गंदा हो रहा है। लेकिन कृष्ण के जब आंखों का काजल गिरता है ना, तब भी वो इतने सुंदर और अति सुंदर हो जाते हैं। और हम इस लीला का जब गान करते हैं दामोदर अष्टकम में, तो आता है कि भगवान की आंखों का काजल गिरने से वो और सुंदर लगने लग गए हैं। तो वो सुंदर लग रहे हैं और साथ में थोड़ा डर भी रहे हैं। जब डर रहे हैं तो यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भाग रही है और उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, काफी लेट एज में कृष्ण भगवान ने उनके घर में जन्म लिया। तो कह रही है काना मैं बूढ़ी हो गई, मैं भाग नहीं सकती हूँ, तू भाग जा रहा, रुक जा रुक जा रुक जा। तो कृष्ण भगवान भी रुक जाते हैं और फिर मैया जो है उनको वो कहती है कि आज तू काना बहुत तूने शरारत करी, अब मैं तुझे क्या करूंगी, इसके लिए दंडित करूंगी। लेकिन वहां पर आने के बाद मैया पिघल जाती है, अरे मैं मारूंगी थोड़ी अपने कृष्ण को, तो मैं क्या कर देती हूँ, उसको बांध देती हूँ। तो बांधती क्यों, इसलिए ताकि इसने अपने घर की मटकी तो फोड़ दी, अब कहीं इस गुस्से में जाकर पूरे गांव की मटकी ना फोड़ दे, तो इसलिए उन्होंने कहा आप मैं बांध देती हूँ। तो बांधने के लिए उन्होंने एक रस्सी ली और उस रस्सी को लेकर क्या किया, उखल, एक उखल से उनको बांध दिया। जब बांध दिया, बांधने की कोशिश कर रही है तो जो रस्सी है वो दो उंगली छोटी पड़ जाती है। तो कहती है अरे ये क्या हुआ, इतना सा काना, 3 साल से छोटा, इतनी बड़ी उखल और ये इतनी बड़ी रस्सी जिससे मैं गाय भैंस से बांध देती हूँ और वो काना को नहीं बांध पा रही। तो फिर वहां से गोपियां गोप आदि गुजर रहे होते हैं, देखते हैं कृष्ण के साथ आज दुर्व्यवहार कर रही मैया, कुछ तो गाना गाती थी और उनके लिए बड़ा प्रेम करती थी, आज ये क्यों ऐसा हुआ कि इनको बांधा जा रहा है। तो बताती इन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो सारे बोलते हैं हाँ हाँ इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो कहते लेकिन ये रस्सी छोटी पड़ रही है। कहते अच्छा आप चिंता मत करो, हम भी रस्सी दे देते हैं। तो छोटी बांधते हैं ना माताएं लोग, तो एक होता है उसमें रस्सी बांधती थी रेशम की रस्सी, तो रेशम की रस्सी अपनी अपनी चोटियों से निकाल कर सब कहते ये तो हमारी रस्सी, इसलिए नहीं दे रही कि वो काना को बंदे करना चाहते, क्यों दे रही है, क्योंकि वो चाहते कुछ तो हमारी सेवा में भी, हमारा भी सेवा में लग जाए ठाकुर जी की। जैसे हम लोग कई बार मंदिर के लिए डोनेशन मांगने जाते हैं तो उसमें से कोई व्यक्ति कहता है मैं दूंगा 5 लाख रुपए और चाहिए ही हमको टोटल 5 लाख रुपए, और एक व्यक्ति ने दे दिया तो बड़ा आसान है, किसी की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम बोलते हैं आप मत दीजिए, आप बोलिए सबसे ही सब भी दे, चाहे 100-200 रुपए भी देकर सब देंगे ना तो हम वो ज्यादा अच्छा है। वजह क्यों, क्योंकि सबको सेवा में लगाना जरूरी है। लोग आज लक्ष्मी को अपना मानने लग गए हैं, रावण अपना मानता था सीता जी को कि ये तो मेरी है लक्ष्मी, तो उसके साथ क्या हुआ दुर्व्यवहार। हनुमान जी ने क्या किया, वापस लाकर सीता जी को किसके पास प्रदान किया, तो लक्ष्मी तो नारायण की है हमारी थोड़ी है, लेकिन हनुमान जी कहता ही तो इसलिए अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो हमें उसकी लक्ष्मी उसको देनी चाहिए, किसको, जिसकी है नारायण को या कृष्ण को। तो फिर वो उनके पास पहुंच जाती है तो हम हनुमान जी तरह दास बन जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। आज भी हनुमान जी की ग्लोरीज सब गाते हैं, मंगलवार को लाइन लगती है इतनी ज्यादा, जो मंदिर 9 बजे बंद होता है उसमें ओवर टाइम चलता है, 12 बजे तक बंद होता है। तो इसके कारण अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में आप भक्त बने तो भगवान की लक्ष्मी भगवान को दे देनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमारा कुछ तो सेवा में लगेगा, सबने अपनी अपनी रेशम की रस्सी निकालकर दे दी और जब बांधा गया तो फिर से वो रस्सी दो उंगली, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, कैसे एक कृष्ण की रस्सी दो दो उंगली छोटी पड़ जाती है और बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बांध पा रहे। तब उन्होंने देखा कि यशोदा मैया पूरा हार गई है और उनसे बांधी ही नहीं जा रही रस्सी, तो हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे लला ये क्या कर रहा है तू, समझ नहीं आता कितना पेट फुलाता है कि हम तुझे बांध ही नहीं पा रहे, ऐसे क्या लीला कर रहा है, मैं तो हार गई। जब हम जीवन में ये मान लेते हैं कि हम क्या हो गए, उसके बाद कृष्ण भगवान कृपा करते हैं। इसीलिए जब हम मंदिर में आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, दोनों हाथ खड़े करिए और क्या बोलिए,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये हाथ क्यों खड़े करवाते हैं, हार गए। जब कोई बैंक में डकैती होती है ना तो हाथ में बंदूक लेके जब लुटेरे आते हैं तो कहते हैं हैंड्स अप। तो जैसे हैंड्स अप करते हैं ना, मतलब भाई अब गोली मत चलाना, बस 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 बंद करो। और वैसे ही हम भी बोलते हैं कृष्णा से, अब आपकी माया की शक्ति से हम क्या हो गए, हार गए, बस अब बंद करो और नहीं और नहीं। तो हम हाथ खड़ा करते हैं सरेंडर। इसलिए चेतन महाप्रभु ने बोला इसे हाथ खड़ा करना चाहिए। तो इसी के कारण जब यशोदा मैया ने बोला मैं तो हार गई, तो फिर भगवान बोले ला मैया मैं खुद ही बांध लेता हूँ। तो भगवान ने अपनी रस्सी खुद लेकर बांध ली। बोला अरे बड़ा जी लिया, मैं बांध रही थी तब नहीं बांध रही थी, ये 3 साल से छोटे बच्चे ने क्या किया, बांध लिया आपने आपको उसी रस्सी से, ये तो कमाल हो गया। तो वो जो 2 उंगली है उसके बारे में हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि पहली उंगली जो है उसका मतलब है प्रयास, प्रयास की उंगली है पहली। पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, कृपा मतलब कर और पा, तो प्रयास करने के लिए पहली उंगली छोटी पड़ रही थी। और दूसरी उंगली है कृपा, तो पहली उंगली जब प्रयास करते हैं तब दूसरी उंगली कृपा में होती है। उन्होंने बांधने का प्रयास किया तभी तो कृष्ण बंधे, अगर प्रयास ही नहीं करते तो ये लीला होती। आज आप कृष्ण को अपने हृदय में बांधने का प्रयास नहीं करेंगे तो आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो इसके कारण हमको कृष्ण को अपने हृदय में बांधने का प्रयास करना चाहिए। और जब वो हमारे हृदय में बंध जाएंगे तो वो 3 जगह से टेढ़े हैं, अंदर जाने में जितनी प्रॉब्लम है ना बाहर निकलने में तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है। एक बार अंदर आ गए हैं ना हृदय में, उसके बाद बाहर नहीं जाते हैं। आप चाहे कहीं भी जाएंगे लेकिन कृष्ण आपके हृदय से कभी बाहर नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और लाभ जो है वो तभी मिलेगा जब हम थोड़ी सी प्रयास करेंगे। तो क्या प्रयास करने चाहिए इस महीने में, ये जो दीवा हुई है दीपावली के दिन हुई है। ज्यादातर लोग दिवाली के दिन पटाखे चलाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सोचते हैं बस लक्ष्मी जी आ जाए और बाकी देवी देवता से हमें क्या मतलब। लक्ष्मी जी का अपना वाहन क्या है, हाजी उल्लू, उल्लू अच्छा होता है, खराब किस चीज का प्रतीक है उल्लू, मूर्खता का। इसीलिए लक्ष्मी आती तो है, आप उसको इनवाइट करते हैं अकेली अकेली, लक्ष्मी जी आती लेकिन किस पर आती है, उल्लू पर। तो व्यक्ति को लक्ष्मी तो मिली लेकिन साथ में क्या मिली, मूर्खता मिली। इसी कारण उसका जो धन है वो लगाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलता है और उसके बाद में हार्ट अटैक में मारा जाता है, हाय हाय लॉस हो गया, हाय हाय लॉस हो गया। आज पूरी इंडस्ट्री डाउन है, हम इतने लोगों से मिलते हैं और वहां पर हम देखते हैं लोग रो रहे हैं क्या हुआ, बड़ा लॉस है, बड़ा लॉस है, 150 करोड़ का नुकसान है, 4000 करोड़ का नुकसान है, क्यों हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ लक्ष्मी मांगी, लक्ष्मी तो मिली लेकिन मूर्खता साथ में मिली और आपने उसको गलत जगह इन्वेस्ट किया। और कुछ लोग जुए में लगा रहे हैं, शराब खाने रोज, यहाँ पर आप जाएंगे इतनी शराब की दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, लोग अपने धन को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, हर साल मांगते लक्ष्मी आओ लेकिन किस पर आओ, उल्लू पर, अकेले आएंगे। अभी माता जी को इन्वाइट किया जाए कि अकेली माता जी आइए तो किस पे आएंगे, उनका वाहन स्कूटी या छोटी गाड़ी सेंट्रो ऑल्टो, लेकिन प्रभु जी के पास बड़ी गाड़ी है। अभी प्रभु जी को इनवाइट करें, प्रभु जी आइएगा तो प्रभु जी आएंगे ना, तो माता जी चलो तुम भी चलो। किसी के घर कार्ड देते हैं तो लिखते हैं मिस्टर शर्मा एंड विद फैमिली, तो मिस्टर शर्मा आएंगे तो पूरी फैमिली अपना आएंगे, लेकिन माता जी को बताइए हमारे घर कीर्तन माता जी आना, तो माता जी अकेले आएगी ना, बच्चे आएंगे ना पिताजी आएंगे। तो इसका मतलब अगर हम लक्ष्मी किसकी पत्नी है, नारायण की, अगर नारायण को अगर पूजेंगे भजन करेंगे उनको बुलाएंगे तो लक्ष्मी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो नारायण जब आते हैं तो किस पे आते हैं, उनका वाहन क्या है, गरुण। और गरुण पर जब वो बैठ के आते हैं तो लक्ष्मी जी को कहते हैं बैक सीट पे आप भी बैठ जाओ, वो पीछे बैठ जाती हैं। तो जब नारायण लक्ष्मी के साथ आते हैं तो गरुण पर आते हैं। गरुण किस चीज का प्रतीक है, हाजी विवेक इंटेलिजेंस। और जब व्यक्ति के पास नारायण आते हैं जीवन में तो लक्ष्मी तो ऑटोमेटिकली आती है। आप देखिए बिरला फैमिली, हम बिरला बोलते ना नहीं, और तुम बिरला एग्जाम्पल देते हैं, बिरला आज क्यों बिरला बनते हैं, क्योंकि उनका नाम था जो उनके फोर फादर थे उनका नाम था घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा आपने मेरे नाम के आगे दास क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि अगर मैं तुम्हारा नाम खाली घनश्याम रखता तो तुमको जीवन में ये बात का गर्व हो जाता कि मैं कौन हूँ, भगवान हूँ। आदि हजार लोगों के साथ यही होता है, पहले बचपन में रखते हैं नाम बच्चे का कृष्णा कान्हा, और जब वो बड़ा होता है तो फिर वो कन्हैया बन जाता है, और फिर जब कॉलेज में या फिर और बड़ा बनता है तो फिर वो लड़कियों को लेके घूमता है बाइक पे, तो लोग पूछते वाह भैया जैसा नाम वैसा काम, रासलीला कर रहे हो। लोग इस तरह से अटॉल्ट बसते हैं क्योंकि माँ बाप ने बच्चे को बताया नहीं तेरा नाम हमने कृष्ण क्यों रखा। तो नाम कृष्णा नहीं रखना चाहिए, नाम क्या रखना चाहिए? कृष्ण दास। तो बच्चा पूछे अरे हम दास बंगाली थोड़ी है, हमारे नाम के आगे दास क्यों लगाया? बोले बंगाली वाला दास नहीं है, तू भगवान का दास है। हाँ चरण दास, कृष्ण चरण दास। हमें हमेशा ये बच्चों को सिखाना चाहिए अपने, और अपने जहन में भी आना चाहिए ताकि जीव जो है उसका स्वरूप ही है, जीवे स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास हैं। जब तक ये रहेगी अभिलाषा कि नहीं हम तो क्या है बॉस, तो फिर सब बेकार है। इसीलिए कहते हैं कृष्ण दास बिंदास, माया दास सदा उदास। माया का जो दास है वो सदा उदास रहता है, चाहे कितना भी पैसा होना उसके पास में है, लेकिन आप अभी अभी जाकर पूछ लीजिए अंबानी जी से कैसा चल रहा है, तो बता देंगे मेरे शेयर में ये प्रॉब्लम है, वो कोई सेटिस्फाइड नहीं है। और एक गरीब आदमी जो कृष्ण भक्त हुआ है उसे पूछे कैसा चल रहा है, अरे आनंद मंगल कृष्ण मंगल, अरे खाने को तो है ना तुम्हारे पास, अरे भजन तो हो रहा बढ़िया। हनुमान जी से पूछा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी बोलते सुंदर कांड में सबसे बड़ी विपत्ति सोई जादिन सुमिरन भजन ना हो। और हम क्या सोचते सबसे बड़ी विपत्ति सोई जादिन बैंक बैलेंस खत्म हो। तो सबसे बड़ी विपत्ति है क्या, जिस दिन भगवान के नामों का जप नहीं हो रहा, स्मरण नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम हमें समझना चाहिए। तो अगर हम इस दीपावली पे अगर लक्ष्मी जी की पूजा करना ही चाहते हैं तो किसके साथ करनी चाहिए? तो विवेक साथ में आता है। नया जो घनश्याम दास बिरला थे उन्होंने अपने बेटे दामोदर दास बिरला को एक लेटर लिखा था, मुझे याद है ईयर 1927 या 28 जो भी रहा होगा, उस समय एक लेटर लिखा। उस लेटर में क्या लिखा था कि बेटा हमारे पास बहुत धन है और आगे आने वाली चार मतलब पीढ़ियों तक बिरला को माना जाएगा जाना जाएगा, लेकिन याद रखना कि ये जो भी है हमारे पास किसका दिया हुआ है, कृष्ण का, तो किसकी सेवा में लगना चाहिए। इसलिए आज देखो जितने भी जगह उनकी इंडस्ट्री होती है हर जगह एक टेम्पल होता है, बिरला टेम्पल होता है ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसीलिए उनके फैमिली में उन्होंने सिखाया कि आपको आपका धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब आप दुबई जाएंगे या यूएई कंट्रीज में जाएंगे, सऊदी अरेबिया में, आप देखेंगे हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक घर में रहने वाला व्यक्ति जो कमाई आती है ना उसका कुछ हिस्सा पहले किसको देता है, मस्जिद को देता है, और कहता है अल्लाह ताला ने मुझे दिया पहले उसका फिर मेरा बचा हुआ। हम कहते हैं पहले हमारा बच गया तो दे देते हैं। अच्छा धर्म दान भी वही देते हैं जो बचा हुआ होता है। घर के बाहर कोई भिखारी आए ना तो पूछते हैं कुछ बचा है, ये नहीं बोलते हैं कि आज क्या ताजा बना है, पहले दूसरों को खिलाकर खाना चाहिए। एक्चुअली ये शीतलता आती है हमारे जीवन में, ये है संस्कार है जो, लेकिन हम बहुत दूर हो गए इन संस्कारों से। इसीलिए लक्ष्मी चंचल है, अभी इस घर में कभी इस घर में, इस दिवाली में दिवाली, अगली दिवाली में दिवाला। तो इसके कारण अगर चाहते हैं कि हमेशा अच्छी दीपावली रहे तो नारायण की पूजा करनी चाहिए। और नारायण की भी कौन से रूप की पूजा, दामोदर, क्योंकि ये लीला दामोदर लीला उसी दिन हुई है दीपावली के दिन, और उस दिन दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। और चार प्रकार की दीपमाला होती है, शिखर दीप, उस दिन दीप को कहाँ रखना चाहिए, शिखर पर, घर के शिखर के ऊपर या मंदिर के शिखर के ऊपर। और एक बोलते हैं आकाश दीप, बेटा अपने पतंगों के अंदर दिए जलाकर हवा में उड़ाए जाते हैं, तो उसके भी उड़ाना चाहिए। तो ये भगवान की सेवा है एक्चुअली। उसको अगर इस भावना से करें कि हे दामोदर हम आपकी सेवा में इन आकाश दीपों को छोड़ रहे हैं, उसमें हरे कृष्णा लिखिए उसे छोड़ दीजिए हवा में। हम मंदिर में करते हैं हर रोज 10-15 दिए हवा में आकाश दीप छोड़े जाते हैं, और शिखर के ऊपर दीप लगाए, दीप माला। हाँ दिवाली का मतलब है दीयों की माला, दीपावली, आवली, दीपों की आवली। और घर में दिए इसलिए नहीं लगाने चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगे सोचकर बड़ा सजा हुआ घर है, वो जानती है नारायण के साथ रहती है, एसोसिएशन करती है, नारायण ने बोल रखा है, ऐसे नहीं गुमराह मत हो जाना किसी के घर में चले जाओ, जो भक्ति करे उसके घर जाओ। तो इसलिए जो नारायण की भक्ति कर रहे हैं उनके पास में नारायण के साथ में लक्ष्मी जाएंगे। दीपावली में दीपों की आवली लगानी चाहिए भगवान को अर्पित करके, दीप घुमाते जाओ भगवान को लगाते जाओ, या फिर सारे दीपों की एक थाली में सजा लिया, भगवान का दामोदर अष्टकम पढ़कर उनको घुमाया, और उसके बाद पूरे घर में उनका प्रसाद लगा दिया। दीपावली इस तरह से मनानी चाहिए, शिखर दीप, आकाश दीप, दीपमाला, दीपावली, इस तरह से करना चाहिए। और जो यशोदा दामोदर लीला है इसी को छाया चिंतन करना चाहिए, पूरे महीने इसको गाना चाहिए। तो पांच चीजें इस महीने में जरूर करनी चाहिए। अब बताते हैं कौन सी पांच चीजें करनी चाहिए। हरि जागरणम क्या करना चाहिए? हरि जागरण, देवी जागरण नहीं करना चाहिए, हरि जागरण करना चाहिए। रात्रि में जागे और जाग करके हरि का जागरण करें। तो बहुत मुश्किल है रात को जागना, बोले अभी तो दिन में भी जागना मुश्किल हो गया प्रभु जी, इतना आलस है कि दिन में भी नींद आ जाती है। तो इसलिए रात्रि में एक रात्रि जागे कम से कम, पूरे महीने में कोई भी एक दिन, या तो दिवाली के दिन या फिर एकादशी के दिन, कोई भी एक दिन चुन सकते हैं और रात्रि जाकर कीर्तन करें या फिर जप करें, भगवान का शास्त्र करें, पूरा घर बैठकर डिस्कशन कर सकता है। हम हरि जागरणम प्रातः स्नानम, और क्या करना चाहिए? प्रातः स्नान। तो कौन सा प्रातः का मतलब क्या होता है? सुबह। सुबह कितने बजे होती है? चार बजे। तो चार बजे उठकर स्नान कर सकते हैं, साढ़े तीन पे भी कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी सेवनम क्या करना चाहिए? तुलसी सेवा। तो तुलसी सेवा का मतलब है इस महीने में, और तुलसी भी डिस्काउंटेड कृपा कर रहे हैं, उनको देखने मात्र से, उनको दर्शन करने मात्र से आपको कृपा मिलेगी। तुलसी का एक बीज पौधा नया लगा सकते हैं इस महीने में, और तुलसी दान, किसी नए भक्त को तुलसी का पौधा दान करेंगे तो भी कृपा मिलती है। तुलसी आरती करनी चाहिए, तुलसी आरती करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए, रोज हमें ये करना चाहिए। तुलसी सेवनम उद्यापनम, उद्यापन करना चाहिए, उद्यापन मतलब चैरिटी, कुछ चीजों का दान करना चाहिए, त्याग भी सकते हैं उस चीजों को, जैसे कोई चीज आपको खाने की बहुत पसंद है तो उस चीज को छोड़ दीजिए, जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है तो मीठा त्याग दें, किसी को प्रसाद खाना मतलब खाने के बिना रह ही नहीं जाता तो उसे एक टाइम फूड छोड़ देना चाहिए, किसी को अचार के बिना नहीं रह जाता, खुद का आचार चाहे कैसा भी हो लेकिन आचार खाना जरूरी है, तो वो जो आचार है उस आचार को त्याग सकते हैं। हाँ, तो बोले इस महीने में आम का आचार, नींबू का आचार नहीं खाऊंगा, सिर्फ कृष्ण भक्ति का आचरण करूंगा, आचार करूंगा, तो फिर वो व्यक्ति ऐसे कर सकते। तो कोई भी एक वाव, एक तपस्या करने की भावना जागृत करके कुछ एक चीज का त्याग इस महीने में हमें करना चाहिए, चाहे नींद का त्याग कर दे, चाहे बोले कि इस महीने से मैं 16 माला का जप करूंगा। जैसे एक महाराज से किसी ने पूछा हमारे इस्कॉन में, महाराज आपने क्या प्रतिज्ञा ली है इस महीने में? तो उन्होंने कहा इस महीने में मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं रोज ध्यान पूर्वक जप करूंगा। ये बहुत बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है इस कलयुग में कि ध्यान ही नहीं लगता, ध्यान पूर्वक जप करना ये सबसे बड़ी तपस्या है। फिर है दीप दानम, फिर क्या करना है? दीप दान। तो पांच चीजें क्या है? हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतानि इतानि कार्तिके। कार्तिक का यही व्रत है, इस व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब शक्ति, और राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, इसलिए व्रत को ऊर्जा व्रत, या फिर राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी, और ऊर्जेश्वरी नाम होने के कारण इस महीने को ऊर्जा महीना भी कहते हैं, और इस व्रत को कार्तिक व्रत भी कहते हैं और ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति इस महीने में व्रत नहीं करता, मतलब कोई वाव नहीं लेता, कोई अपने जीवन में प्रतिज्ञा नहीं लेता, हाँ बस सुना और सो गया, तो उसको कई कल्पों तक नरक में वास करना पड़ता है। कोई एक वाव तो लेना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं, कि इस महीने में मैं रोज गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा, खाना पीना नहीं छोड़ सकता हूं लेकिन एक गीता का श्लोक, रोज 16 माला का जप करूंगा, या फिर रोज मैं 8 माला का, जो करते हैं 8 का वो 16 का माला का जप करूंगा, या फिर रोज मैं कम से कम आधा घंटा कृष्ण कथा सुनूंगा, हरे कृष्णा। तो इस तरह से कोई भी प्रतिज्ञा आप ले सकते हैं, जो नहीं लेता उसको कल्पों तक नरक में वास करना पड़ता है। लेकिन एक दीपदान करने से 10,000 गाय दान देने का फल मिल जाता है, तो दीपदान का व्रत ले सकते हैं कि रोज दीपदान समय पर करेंगे, रोज दीपदान तो करेंगे एक बार भगवान को। तो इस तरह से अनेकों अनेकों चीजें इसमें बताई गई है। अब कहते हैं कार्तिका खलु वैमासम सर्वमासेषु च उत्तमम पुण्यम परमम पुण्यम पावनम च पावनम। कार्तिका खलु वैमासम, जितने भी मास है 12 महीने उसमें से कार्तिक सबसे उच्च महीना है। कार्तिका खलु वैमासम सर्वमासेषु च उत्तमम, सारे मासों में क्या है? उत्तम है। पुण्यम परमम, पुण्यम, पुण्यों को इकट्ठा करना है, अगर किसी को अर्जित करना है पुण्य, तो इससे बढ़िया और कोई महीना नहीं होता। पुण्यम वहां सबसे ज्यादा, परमम पुण्यम और पावना नाम च पावनम, जो व्यक्ति पावन करने वाली है ना उसको भी पावन कर सकता है ये महीना, इतना पावरफुल ये महीना है। इस महीने में धाम वास करना चाहिए, जैसे कार्तिक में वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन में एक दिन तो एटलीस्ट जाए, यमुना आदि नदियों में, गंगा नदी में स्नान करें, और सुबह जब स्नान करते हैं अपने घर में भी तो इस स्मरण से करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, गंगा या यमुना में स्नान कर रहा हूँ। तो जैसे बोल सकते हैं आप अपने जल के अंदर भी, गंगा आय च यमुना आय च एव नर्मदा सरस्वती गोदावरी सिंधु जलम आस्मिनम सनदन करो। ये सात नदियां जो पवित्र नदियां हैं, क्या करिए, इस जल में प्रवेश करिए। हम श्लोक नहीं जानते हैं तो कम से कम ध्यान कर सकते हैं, तो ध्यान करके बोलिए हे यमुना नदी, हे गंगा नदी आइए, मैं तो आप तक नहीं आ सकता हूँ, आप कृपालु आप मेरे घर में आइए और मैं फिर उससे स्नान करूंगा। या फिर कुछ लोग बोलते तिल, तिल डालकर गंगा या अपने घर के पानी में स्नान हमें करना चाहिए। और जब स्नान करते हैं तो स्नान करते वक्त भी ध्यान करना चाहिए। कहते हैं ध्यान किसका करना चाहिए, किसका ध्यान करेंगे, लक्ष्मी कैसे आएगी, है ना, किसका, नारायण का। हाँ, दामोदर का ध्यान करना चाहिए, दामोदर मास है तो दामोदर का क्या कहते हैं, तव ध्यानेन देवेश, जब भी स्नान करें तो ध्यान किसका करना चाहिए, देवों के ईश्वर देवेश कृष्ण, तव ध्यानेन देवेश जलम आस्मिन स्नातुम उदयत, मैं स्नान कर रहा हूँ आपके जल में, तुम प्रसादम च मे पापम, आपके प्रसाद से जो मेरे पाप है क्या हो, दामोदरम विनश्यतु, सारे के सारे पापों को हे दामोदर विनाश कर दीजिए इस ध्यान से। अभी श्लोक नहीं जानते हैं तो कम से कम ये तो बोल सकते हैं, दामोदर भगवान हे कृपालु, हे दीन दयालु, हे पतित पावन, मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं आपके लिए सुबह उठाऊ तो मुझे स्नान करें और शक्ति प्रदान करें कि मैं पूरा महीना ये पालन कर सकूं। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। बताते हैं कि एक चूहा, चूहिया मतलब चूहा होता है ना, उसकी फीमेल फॉर्म चूहिया, जानते हैं चूहा चूहिया, तो वो एक एकादशी का दिन था इस महीने में, एक पद्म पुराण स्कंद पुराण में एक लीला आती है, कहते हैं कि वो चूहा जो था चूहिया, उसने क्या देखा कि एकादशी का दिन दीपदान किया एक भक्त ने, और दीपदान करने के बाद में, इस महीने में जब दीपदान करते हैं ना तो दो ही चीजों से कर सकते हैं, घी से और या फिर तिल के तेल से, सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, घी भी हो गाय का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान गोपाल है, भैंस पाल रहे हैं इसलिए, लेकिन हम भैंस का घी यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं, भगवान के लिए गाय का दूध या घी इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो घी से उन्होंने दीपदान करके दिया रखा था, और दिया जो था बुझने वाला था, तो चूहा जो आया ना, चूहा उसने भूख लगी थी तो उसने देखा कि विग्रह ऑल्टर के ऊपर जो घी भरा हुआ बत्ती खत्म हो रही है, बुझ रही है, तो उसने उसके नीचे से उसको पकड़ लिया, और जैसे पकड़ा तो उसका दबने से जूस घी जो था ऊपर की तरफ आया और अग्नि दोबारा से प्रज्वलित हो गई, प्रज्वलित हुई, लेकिन उसकी मूछ जो थी ना, मूछे होती है मुस्टेचेस, उसमें आग लग गई, आग लगने से उसके पूरे मुख मंडल में आग लग गई, आग लगी तो गरम गरम लगने से वो दो पैरों पे नीचे वाले पे जंप करने लगे। जब वो जंप कर रही थी तो भगवान ने क्या सोचा, दीपदान हो रहा है, नृत्य हो रहा है मेरे आगे, और कृपालु क्योंकि इस महीने में बोला ना, मजाक मजाक में भी अगर करा ना तो कृपा मिल जाती है, तो मजाक में उन्होंने अपने अंतिम समय में जब इस तरह से पूरा, तो फिर भगवान ने क्या किया, उसको अगला जन्म किसका प्रदान किया, भक्त शरीर भक्तों के घर में प्रदान किया, और भक्त के घर में आने के बाद बचपन से उसने क्या सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और अंतकाल में कहां गए, भगवत धाम। अब कई जगह पर इस कथा को इस प्रकार से भी वर्णन किया गया स्कंद पुराण के अलावा, कि अंतकाल में जो थी वो व्यक्ति जो था उसके अंतकाल में क्या हुआ कि विष्णु दूत भी आए और यम दूत भी आए, और विष्णु दूतों ने कहा कि इसने क्या किया, दीपदान किया था, अपने पिछले जन्म में जब चूहा था तो इसने दीपदान किया था, उसके कारण से मनुष्य शरीर मिला और उसके कारण से सारे पाप समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा लेकिन इसने इस जन्म में तो बहुत सारे पाप कर दिए अनजाने में, तो इसके कारण ये यमलोक जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसने क्योंकि दीपदान किया है और कार्तिक के महीने में किया है तो वो इसका अभी तक पेंडिंग है, तो एक बार तो हम इसको लेके जाएंगे एक बार। तो फिर उसमें ना यमलोक वो लेके जाते हैं ना विष्णु दूत लेके जाते हैं, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति वापिस आती है और वो समझ जाता है जैसे अजामिल की स्टोरी में होता है, अजामिल कथा में, और फिर वो ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करता है और फिर अंतकाल में कहा जाता है भगवत धाम, वो ऐसा धाम जहां से दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। यह गत्वा न निर्वत तत्ते तद धामम परम मम, ऐसा धाम जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। तो ये स्कंद पुराण की कथा है जिसमें आता है एकादशम परिर्दातम दीपम प्रज्वलम मूषिका, एक मूषिका थी जिसने दीप को प्रज्वलित किया। मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम, जो मनुष्य का शरीर दुर्लभता से प्राप्त होता है बड़ी मुश्किल से, हाँ दुर्लभ शरीर ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उसमें आने के बाद क्या हुआ परम गतिम उपवापसा, उसको क्या प्राप्त हुई परम गति प्राप्त हुई एक ही बार में, एक मनुष्य शरीर फर्स्ट टाइम पाया और बैक टू गॉड है वापस भगवत धाम चले गए। तो हमें भी अपने इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए और इस महीने में जितना हो सके उतना ध्यान करें भगवान का, जप करें भगवान का, और जो फेस्टिवल्स हैं उन फेस्टिवल्स को भगवान की सेवा समझते हुए करना चाहिए। जैसे मतलब जी टाइम कितना है हमारे पास 10 मिनट, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे पढ़ना बंद कर सकते हैं या दामोदर अष्टकम भी पढ़ना है। तो जहां पर भी मैं कार्तिक में इस तरह से प्रचार करने जाते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं जाना ही होता है सोसाइटीज में या जहां पर भी, तो हम जगह पर ये बोलते हैं कि जो 5 दिन का फेस्टिवल आता है पंच दिवसीय उत्सव इस महीने में मनाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है धनतेरस, तो लोग बड़े उत्साह से धनतेरस को मनाते हैं। धनतेरस में क्या करते हैं आप लोग, बर्तन खरीदते हैं और दिया जलाते हैं और गोल्ड खरीदते हैं। तो देखिए हम वो सब करते हैं जो शास्त्र में वर्णन नहीं है, बुरा मत मानिएगा, शास्त्र में कहीं पर लिखा नहीं कि बर्तन खरीदना चाहिए। ये सब तो आप लोगों की भौतिक इच्छाओं के कारण जो ज्योतिष व्यापार चल रहा है संसार में, वो लोग टेलीविजन पर आकर बोलते हैं या फिर वो गोल्ड जो बेचने वाले ना जो कंपनी है गोल्ड बनाती है वही अपना पैम्फलेट छापेगी कि इस महीने में क्या करना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए धनतेरस, उनकी तो बिक्री बढ़ रही है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, धनतेरस का दिन वो दिन है जिस दिन समुद्र मंथन में धनवंतरी भगवान का जन्म हुआ। समुद्र मंथन क्यों हुआ, क्योंकि सारे के सारे देवता और राक्षसों में लड़ाई चल रही थी और राक्षस देवताओं का संहार कर रहे थे, तो देवताओं ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान हम चाहते हैं हम अमर हो जाएं और अमरता का हमें वरदान प्रदान करो। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस महीने में, भगवान बार बार वही बोल रहे हैं प्रयास करो कृपा मिलने की। तो क्या प्रयास करो कि समुद्र का क्षीर सागर का मंथन करो, सुना होगा आपने समुद्र मंथन लीला, तो समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन में से क्या निकलेगा अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान करने से तुम लोग क्या हो जाओगे अमर, और फिर राक्षस कुछ भी करे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हमें तो मंथन नहीं करना आता कैसे करें, तो फिर भगवान ने वो भी आइडिया दिया, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि युगम तम ये नाम उपयंत थे, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके कारण वो मेरे तक आ सकते हैं। तो भगवान बुद्धि देते हैं और उस बुद्धि से उन्होंने कहा तुम वासुकी नाग की रस्सी बनाओ, तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब उन्होंने पूछा देवताओं ने हम कौन सी साइड पकड़े, वास्तु नाग में एक साइड राक्षस एक साइड देवता, तो भगवान ने कहा तुम सर्प के मुख वाली साइड पकड़ो और राक्षसों को पूछ वाली लो। तो मंथन के लिए बीच में क्या लगाया जाए, तो उन्होंने कहा सुमेरु पर्वत, प्रभु जी ने बिल्कुल ठीक बताया सुमेरु पर्वत के बीच में मथनी बनाई गई, तो रखें किसके ऊपर, रखें किसके ऊपर इसको मथनी, जैसे ही लगाते थे वो पहाड़ सुमेरु पर्वत आधा नीचे चला जाता था क्षीर सागर को दबाता हुआ, इतना पावरफुल भारी पहाड़, जिस भी चीज के ऊपर रखो वो नीचे चला जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि मंथन हो तो भगवान के पास जाओ, तो भगवान के पास गए तो भगवान ने एक रूप लिया अपना टॉर्टोइस कछुए का रूप, केशव द्रीता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे, तो उन्होंने कुर्म का शरीर कछुए का शरीर लेकर भगवान ने अपनी पीठ के ऊपर सुमेरु पर्वत को धारण किया, इसी के कारण आज भी कछुए के सीट के ऊपर गड्ढे आप देखते हैं ना, वो भगवान के बनाए हुए गड्ढे हैं, भगवान ने उस तरह से लीला करी है। तो राक्षसों ने बोला तुमने कौन सा साइड ली, बोले मुख वाली, और तुमने हमें कौन सी दी, बोले पूछ वाली। कह रहे भगवान देवताओं की बहुत साइड लेते हैं, हम चेंज करेंगे, हम मुख वाली लेंगे, तुम पूछ वाली। तो भगवान के पास जो देवता, देवता का मतलब ये है जो हर मुश्किल में किसके पास जाए, राक्षस का मतलब ये है जो हर मुश्किल में किसके पास जाए, अपने पास, कि मैं सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम। कई लोग मिलते भी मार्केट में, अरे मंदिर मंदिर जाने से कुछ नहीं हुआ, खुद करो, खुद ही को कर बुला देना, खुदा हर मतलब दिन से पहले बंदे से पूछे बता तेरी गर्दा क्या है, ऐसे डायलॉग मारता है। अरे ठाकुर जी की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो पूरा का पूरा कैसे तुम कुछ भी कर लोगे जीवन, कैसे तुम सच्चे मालिक बन जाओगे, कैसे तुम करोड़पति बन जाओगे। भगवान चाहेंगे तो आपको बुखार दे देंगे इस तरह का कि पड़े रहोगे हॉस्पिटल में और पैसा बर्बाद होता रहेगा, 30 लाख रुपए लग गए जी, 6 महीने हो गए इलाज नहीं हो रहा। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जिनके पास बहुत धन है लेकिन उनका कई लाख रुपया हर महीने उनके डिसीज को ठीक करने में चला जाता है, और फिर बड़े उसमें बोलते नहीं है, बड़े चौड़े होकर बोलते हैं, क्या करते हैं जी, हम तो इतने पैसे वाले हैं, 50-60 लाख रुपए तो हर महीने बीमारी पे खर्च कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमें हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो देवता गए तो उन्होंने कहा भगवान ने हमें जानता था, उनको वो साइड दे दो, तुम ये साइड ले लो। तो उससे पहले जो राक्षस थे वो काले नहीं होते थे, राक्षस भी सुंदर थे, और राक्षस का मतलब था जिसकी प्रवृत्ति भगवान से दूर जाने की है, जिसको ये लगता है कि कर्ता मैं हूं, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जिसको ये लगता है कि मैं करता हूं अहंकार वश, वो राक्षस है। जो ये सोचता है करता भगवान है वो देवता है, बस यही डिफरेंस है। किसी का ये नहीं होता जो राक्षस है उसके सींग होते हैं, ये तो टेलीविजन में दिखाया जाता है, प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति राक्षस होता है। तो वो मुख की साइड गए और जब वस की नाक को घिसा गया तो उसके मुख से इतना जहर निकला कि उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। तो फिर उसके अंदर कई चीजें निकली, उग्रशर्वा घोड़ा, हाँ अरावत हाथी, उसमें लक्ष्मी जी निकली, इस तरह से 16 वस्तुएं उसमें से बाहर आती हैं, और अंत में एक चीज बाहर आती है, क्या, अमृत। कौन लेकर आता है, धनवंतरी भगवान। तो भगवान विष्णु का अवतार है धनवंतरी, और वो हाथ में एक घड़ा लेकर आते हैं और उस घड़े में अमृत होता है। आप देखेंगे किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वहां पर आप देखिए सर्टिफिकेट लगा होता है धनवंतरी सर्टिफिकेट, धनवंतरी अवार्ड से इनको हम नवाजा गया है, इनको अवार्ड दिया गया है धनवंतरी। धनवंतरी मतलब आयुर्वेदा के भगवान। आयुर्वेद का मतलब क्या है, आयु मतलब उम्र, एज, और वेद मतलब ज्ञान। वो ज्ञान जो आपकी उम्र बढ़ाने में या उसकी रक्षा करने में काम आता है आयुर्वेद, लेकिन लोग जानते हैं आयुर्वेद मतलब समझते क्रीम ऊपर से लगाओ इसका कोई बैड इंपैक्ट नहीं होता, ये नहीं आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब जिससे उम्र आपकी बढ़े। तो धनवंतरी ने अमृत का घड़ा पान कराया देवताओं को ताकि उनकी उम्र इतनी बढ़ जाए कि उनको राक्षसों से वध ना हो उनका। और फिर आप जानते हैं उसके बाद फिर बहुत लंबी लीला, मोहिनी अवतार लेके भगवान आते हैं, गरुड़ उसको अमृत के घड़े को लेके उड़ जाते हैं, 4 स्थानों पे उस अमृत का गिरता है, जिससे कुंभ मेला लगता है 12 साल का जहां जहां पर वो अमृत गिरा था। तो इस तरह से जो लीला है धनवंतरी लीला वो किस दिन हुई, धनतेरस के दिन हुई। लोग जानते नहीं है, वो बर्तन खरीदते, बर्तन खरीदने से क्या होगा, उसमें अमृत कौन भरेगा, बर्तन खरीदने से कृपा नहीं मिली। उस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए उनके बारे में भागवतम, या फिर कहीं से भी उनके बारे में पढ़े, या नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम उनके आगे हाथ जोड़े कृष्ण भगवान के आगे कि हे भगवान मुझे ऐसी काया दो, ऐसा शरीर दो निरोगी, जिसके कारण मैं क्या कर सकूं, आपका भजन कर सकूं, मैं आपका चैंटिंग कर सकूं, आपके मंदिर जा सकूं, मेरे शरीर में इस तरह के रोग ना रहे, ये प्रार्थना करनी चाहिए। और दीप दान करना चाहिए, दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए, गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का एक्स्ट्रा चैंटिंग करना चाहिए, ये धनतेरस। लोगों ने उसको बना दिया बर्तन खरीदो, बगल वाले का सर फोड़ देते रात को, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, बोले एक चम्मच तो दे दो, अरे सब खत्म हो गया, सब खत्म लगे रहते हैं धनतेरस। और नहीं धनतेरस, उसके नेक्स्ट डे आता है नरक चतुर्दशी, उसे लोग बोलते हैं छोटी दिवाली। एक छोटी दिवाली शास्त्र में नहीं है, छोटी दिवाली नाम, नरक चतुर्दशी जो है वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन भगवान ने एक राक्षस का वध किया नरकासुर, जिसकी कैद में 16,100 कन्या थे, अलग अलग जगह से उठाकर राजकुमारियों को उसने अपने कैद में रखा। तो भगवान को जब उन्होंने प्रार्थना करी कि हे भगवान हमें यहाँ से निकालिए, तो भगवान ने उनको वहां से नरकासुर का वध करके रिहा कराया। जब रिहा किया तो सारी बोलने लगी, हम इतने सालों से इस राक्षस की कैद में हैं, अब हमें कौन पत्नी स्वरूप में स्वीकार करेगा। तो भगवान कृपालु पतित पावन दीन दयालु, उन्होंने क्या किया, सबको एक्सेप्ट कर लिया पत्नी रूप में। अभी लोग भगवान के उस कृपा को भी क्या बोलते हैं, उनकी तो 14,100 रानियां हैं, ऐसे भी कोई भगवान होते हैं। अरे उन्होंने कितनी कृपा करी, और एक भगवान नहीं, भगवान ने अपना 16,100 रूपों में विस्तार कर दिया। किसी को काला चाहिए तो काला, किसी को गोरा चाहिए तो गोरा, किसी को छोटा चाहिए तो छोटा, किसी को लंबा चाहिए तो लंबा, जिस स्त्री की जैसी अभिलाषा वैसा पति उसको प्राप्त हुआ कृष्ण रूप में। तो भगवान ये भगवान है, ये थोड़ी कि एक ही व्यक्ति है वो 16,100 रानियां है। कोई व्यक्ति लोग बोलते हैं हमने 40 शादी कर ली या हमने 10 शादी कर ली तो क्या हो गया, आपके भगवान ने तो इतनी शादी कर ली। तो भगवान ने शादी नहीं करी है, भगवान ने कृपा करी है। अगर देखा जाए तो पूरे संसार ही भगवान की पत्नी है, कोई पुरुष नहीं कोई स्त्री नहीं, सब भगवान की पत्नी है। हम सब भोगने वाली वस्तुएं और भगवान भोगता है। भगवान गीता में कहते हैं भोगता राम यज्ञ तपसा सर्वलोकाम महेश्वरम सुवर्दम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम विदच्छति। उस व्यक्ति को शांति मिलेगी वह जानेगा इस संसार को भोगने वाला कौन हूँ, मैं हूँ और तुम मेरे भोगने के लिए बनाए गए। इसीलिए कंज्यूमर शब्द है ना, उसका मतलब क्या होता है, उपभोक्ता, भोक्ता नहीं होता। हम भगवान के द्वारा भोगने की वस्तुएं हैं, भोक्ता नहीं है हम, भोक्ता तो कृष्ण है। इसी के कारण जब वो रिहा करके ले जाते हैं और फिर उन पर कृपा करते हैं भगवान। तो हमें उस दिन भगवान की इस लीला के बारे में एक बुक है हमारे प्रभुपाद जी ने लिखी, इसका नाम है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, वो बुक मिलती है यहाँ पर भी होगी। और उस बुक से आप पढ़ सकते हैं नरकासुर का वध, और उस वध लीला में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से भगवान ने उस दिन कृपा करी 16,100 स्त्रियों के ऊपर, और सबको द्वारका में रहने के लिए उनकी इच्छा अनुसार महल भी बना दिया। करेगा कोई इतनी कृपा, एक ही घर के अंदर 4 स्त्री से शादी करना, वो तो भोगी व्यक्ति होता है ऐसा सोचता है। भगवान हम सबके पति हैं, हम भगवान, हम चाहे पुरुष हो चाहे पत्नी चाहे स्त्री हो, इसीलिए भगवान का नाम है जगत पति। पति का अर्थ जानते क्या होता है, पति का अर्थ क्या होता है, जो पति है वो बताएंगे क्या होता है पति का अर्थ। हाँ बिल्कुल सही माता जी ने बोला, पालन करता इति पति, जो पालन करता है, पत्नी का पालन करे परिवार का पालन करे। और पत्नी को बोला जाता है धर्म पत्नी, क्या बोला जाता है धर्म पत्नी का मतलब जो धर्म की ओर लगाने वाली, धर्म से दूर करने वाली नहीं। अजी बड़ा माला वाला कर रहे हो, साधु बनने की उम्र है क्या, छोड़ो ये सब, मुझे लेके चलो शॉपिंग मॉल। वो नहीं है अच्छी पत्नी, धर्म पत्नी तो वो है जो पति का धर्म के कार्यों में सहयोग दे, पत्नी बर्तन धोए और पति आरती करे, पत्नी भोग बनाए और पति भोग लगाए, पत्नी घर में भगवान के वस्त्र सिले और भगवान के पति जो है भगवान के वस्त्र पहनाए, पति भगवान की किताबें खरीद के लाए पत्नी पढ़े। तो इस तरह से जो धर्म के कार्यों में सहयोग दे वो धर्म पत्नी है। अदरवाइज आजकल मार्केट में मैक्सिमम कौन है, अधर्म पत्नियां। तो शादी होती है ना तो बोलते हैं, हम जब कभी मिलते हैं ना किसी से पार्टी में तो लोग बोलते हैं ये कौन है, बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। मैं आप लोग तो मंदिर नहीं जाते हैं, जप नहीं करते, नहीं नहीं अभी वो टाइम नहीं है, तो फिर ये अधर्म पत्नी है। और जो धर्म से दूर ले जाए वो अधर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी भी है और धर्म पति भी है। ये शब्द नहीं सुना होगा आपने, धर्म पति भी होता है। जो पति पत्नी को धर्म का कार्य करने में सहयोग करे वो धर्म पति है। कोई लोग पत्नी आगे बढ़ जाती है मंदिर जाती है तो धर्म पति जो है वो अधर्म पति उनको डांटते हैं, क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों से छूट करके, वो एक माता जी तुम्हें मिल गई है वो कथाएं सुनाती रहती तुम लोग छूट रहते हो। तो जो ऐसे बोलते हैं वो अधर्म पति है, उनको धर्म पति बनना चाहिए, धर्म के कार्यों में आगे बढ़े, अपनी पत्नियों को सहयोग दें। इस तरह से पति का मतलब पालन करता है, पति जो सृष्टि का पालन कर रहे हैं वो कौन, जगत पति। तो सब जगत के पति है, उसमें से 16,000 को तो उन्होंने खाली बोल दिया ये मेरी पत्नियां मैं स्टैम्प करता हूँ। अदरवाइज देखा जाए तो पूरा संसार ही भगवान की पत्नी है, हम सब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो इस तरह से हम अगर सोचेंगे तो फिर हम नरक चतुर्दशी को बना पाएंगे उसे, और फिर दीपावली का दिन
और जिस दिन दामोदर लीला हुई या फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें उस दिन, इस तरह से हम कार्तिक का महीना मनाएं। और उसके नए दिन क्या हुआ, भगवान ने गोवर्धन लीला करी, आप सब जानते हैं बहुत लंबी लीला है। हम उसमें जो गोवर्धन है उनसे सीखना चाहिए, हरे दास वर्यम, दासों में दास गोवर्धन, जिन्होंने पूरी बारिश को अपने ऊपर सहन किया, सेवा करी पूरे ब्रजवासियों की, है ना। तो हमें भी इस तरह से सेवक बनना चाहिए। कभी आपसे बोल दिया जाए प्रभु जी चार पांच लोग छाते के नीचे बैठे हैं, आप छाता लेके खड़े रहो, कितनी देर खड़े रहेंगे हम, एक घंटा दो घंटा, फिर कहेंगे मुझे भी ठंड लग रही है मैं छाते के नीचे आना चाहता। लेकिन गोवर्धन सात दिन सात रात तक वहां संवर्धक वर्षा, इतनी मोटी वर्षा की बूंद की हाथी की सूंड के बराबर, और वो अपने ऊपर सहन करते रहे, किसको रक्षा प्रदान करने के लिए, ब्रजवासियों। ये ठाकुर जी के भक्त है, इस तरह से होना चाहिए, हरिदास वर्य, दासों में दास गोवर्धन। और कई बार उनको भगवान का स्वरूप भी माना जाता है, इसीलिए जो लोग गोवर्धन जाते हैं उनको गोवर्धन और भगवान के ऊपर शिला पे पांव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान में और भगवान के पत्थर में कोई भेद नहीं है। और लोग जाते हैं तो देखते रात्रि में गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो रात में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सुबह 3 बजे के बाद जगते हैं और रात को 9 बजे शयन करते हैं, तो 9 बजे के बाद और 3 बजे तक रात्रि में परिक्रमा का कोई फल नहीं है। लेकिन फिर भी अनेकों लोग रात में लगाते, सोचते ठंडे ठंडे में लगा लेंगे, पर ठंडा गर्म कुछ नहीं होता। भगवान को आपने अगर परिक्रमा करी तो भगवान जागेंगे कि नहीं जागेंगे। कभी आपने मंदिर में रात में परिक्रमा करी 9 बजे के बाद और 3 बजे से पहले, आप मंगल आरती में जाएंगे ना कभी मंदिर 4 बजे 4:30 बजे, तो आप देखेंगे कि वो अलाउ नहीं करेंगे आपको परिक्रमा करने के लिए कि भगवान सो रहे हैं। जब आप किसी की परिक्रमा करते हो तो वो व्यक्ति उठ जाते हैं। भगवान जब प्रसाद ले रहे हो तब भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जब भगवान के पट बंद हो तब भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप परिक्रमा करेंगे तो भगवान भी उठ जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, ओहो ये मेरी परिक्रमा कर रहा है मुझे अभी से कृपा करनी है। तो गोवर्धन को अगर आत्म परिक्रमा करेंगे तो फिर वो भगवान अलर्ट हो जाएंगे, तो आपने सेवा थोड़ी करी, उनको सोते में से जगा दिया। तो इस तरह हम अपराध करते हैं आज में, तो इसे हमें सुबह 3 बजे के बाद कर सकते हैं, 3 से पहले नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से गोवर्धन आप पूजा हमें करनी चाहिए। और गोवर्धन पूजा में स्कंद पुराण में वर्णन आता है, श्री कृष्ण दास वर्यम अयम श्री गोवर्धन बुधारय शुक्ल प्रतिपदा प्रातः कार्तिके अर्चु अत्र वैष्णवे। वैष्णव लोगों को शुक्ल प्रतिपदा अमावस्या के बाद दीपावली और उसके बाद कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष होता है, तो उसकी जो प्रतिपदा पहला दिन उस दिन गोवर्धन पूजा करना चाहिए। वैष्णवों को गोवर्धन पूजा, कुछ लोग विश्वकर्मा पूजा बनाते हैं, विश्वकर्मा पूजा शास्त्र में वर्णन नहीं, शास्त्र में किसका वर्णन, गोवर्धन पूजा। और उसके बाद में नेक्स्ट डे क्या आता है, भैया दूज। तो भैया दूज में बहन को टेंशन होती है, भाई के घर जाना पड़ेगा, अब तैयार होना पड़ेगा और पता नहीं क्या मिलेगा, और भाई को टेंशन होती है ये तो आ जाएगी मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, 1000 रुपए का नोट ले जाएगी खामा का। तो इस तरह से जो है ये टेंशन का दिन नहीं है। इस दिन बताते हैं, स्कंद पुराण में आता है, ऊर्जा शुक्ल द्वितीयाम मध्यम यम अर्चते स्नानम कृत्वा भानुजम यमलोकम न पश्यति। जो व्यक्ति यमुना नदी में स्नान करता है उस दिन, यम की बहन यमुना, यमराज जो है उनकी बहन कौन है, यमुना, और वो किसकी पत्नी है, कृष्ण भगवान की, इसलिए उनका एक नाम है कालिंदी, कृष्ण भगवान की पत्नी। 8 पौराणिकों में से 8 जो उनकी मेन भागिया है उनमें से कालिंदी यमुना एक है, लेकिन वो किसकी पत्नी है, कृष्ण भगवान की, और किसकी बहन है, यमराज की। इसलिए यमराज को यमुना के अंदर स्नान करने से क्या होता है, उस दिन अगर भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं, इसलिए एक कथा आती है, भाई बहन अगर यमुना में स्नान करते हैं और यमुना से प्रार्थना करते हैं कि हमको क्या दो, कृष्ण भक्ति प्रदान, तो यमुना की पति देव है कृष्ण, तो आराम से कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है। और यमुना के भाई है यमराज,
इसीलिए आता है स्नानम कृत्वा भानु जयम, जो व्यक्ति स्नान करेगा यम लोकम न पश्यति, उस व्यक्ति को यम लोक नहीं मिलता। क्यों? यमुना के भाई साहब कौन है? यमराज। तो यमराज को भाई बहन बोल देती है कि देखो इसने मेरी सेवा करी। यमुना की सेवा ही है कि यमुना में स्नान करें अच्छी भावना से, उसको प्रणाम करें, आरती करें। तो यमुना में अगर स्नान किया तो उसके कारण यमराज को बोल देती है इसको कभी यमलोक मत लेके जाना, क्योंकि अभी क्या बन गया है? कृष्ण भक्त बन गया है। तो कृष्ण भक्त बनने के बाद में यमलोक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि व्यक्ति सदा कंठी माला धारण करता है, तिलक धारण करता है, हाथ में जप माला लेता है और सदा क्या बोलता रहता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसमें बताने के लिए तो अनेकों चीजें हैं। पूरे कार्तिक में मैं प्रवचन देता रहता हूँ हमेशा, हर भक्त देते हैं जितने भी मंदिर में, क्योंकि बोलते हैं कि जो मंदिर में भक्त हैं वो मंदिर दान क्या दे सकते हैं, हम तो मंदिर में सेवा करते हैं, हम क्या दान दे सकते हैं। तो कृष्ण कथा का दान ये सबसे बड़ा दान बताया गया। गोपी गीत में आता है तप कृथा मतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा जो सबका जीवन है उसे जो प्रदान करता है वो सबसे बड़े पुण्यों को अर्जित करता है। तो इसलिए कृष्ण कथा का दान हम करते हैं। तो पूरे महीना बोलते रहते हैं कार्तिक के बारे में, बोलते रहते और इसकी इतनी महिमा है समाप्ति नहीं होती है। दीप की महिमा इतनी, स्कंद पुराण पद्म पुराण इतनी मोटी बुक में इतना सब कुछ लिखा है इसके बारे में, पूरा महीना इतनी लीलाएं हुई है भगवान की। अगर मैं अभी बोलूं ना और 4 घंटे गुजर जाएंगे कार्तिक के बारे में बोलते बोलते हैं। ये नहीं कि कोई छोटा सा टॉपिक है कार्तिक, पूरा महीना। और अनेक अनेक लोग भी आएंगे ना, वो भी बोलेंगे, फिर भी समाप्त नहीं होगा। हर टीचर आएगा, हर लेक्चरर आएगा, हर भक्त आएगा, वो जो बोलेगा आप कहेंगे ये तो बताया नहीं था। हर लोग नई नई चीजें बताएंगे, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी सब में, क्या? कृष्ण भगवान, भगवान का नाम। तो इस महीने में प्रण लीजिए, ये दीप दान करेंगे। दामोदर अष्टकम ये भी पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखा गया, उसको हम रोज पढ़ेंगे। 8 वर्स है उसके अंदर, 8 श्लोक है। तो 8 श्लोक हम गाएंगे और उसके बाद में दीप दान करेंगे, भगवान का नाम होगा, जप करेंगे और कथा सुनेंगे और स्नान करेंगे, तुलसी सेवा करेंगे और धाम यात्रा करेंगे। एक बार धाम जाएंगे भक्तों के संग में। जा रहे हैं हम लोग कार्तिक यात्रा, कितने लोग जा रहे हैं उसमें? बस कितने लोग, बाकी लोग जा रहे हैं। सबको जाना चाहिए कार्तिक यात्रा, कल परसों से शुरू हो रही है। तो धाम वास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज का फल यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, धाम में 1000 मिलेगा। और नॉर्मल डेज में एक माला का फल 1, कार्तिक में 1000। और 1000 को जब वृंदावन में करेंगे, 1000 × 1000 कितना हो गया? 10000। हाँ जी, 10 लाख। तो 10 लाख का फल मिलेगा आपको 1 माला करने पे वृंदावन में अगर आपने किया। तो इसलिए कार्तिक यात्रा हमें करनी चाहिए। ये पंचांग भक्ति बताई गई है, जरूर हमें जाना चाहिए। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इसको बोलते हैं दामोदर अष्टकम। आपके सामने है श्री दामोदर अष्टकम, जिसको आप पढ़ेंगे, हमें समझाएंगे और फिर इसके समाप्त होने पर सब लोग दीप दान करेंगे और उसके समाप्त होने पर प्रसाद खाएंगे। ये दामोदर अष्टकम की प्रेयर आपके सामने प्रिंट आउट फॉर्म में आई है, आप इसको पढ़िए। तो मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा, जैसा माता जी ने मुझसे आग्रह किया था। तो अभी हिंदी अनुवाद पढ़ने से क्या होता है, हमें मालूम रहता है कि हम क्या गाने वाले हैं। पता चला हमने आपसे प्रॉपर्टी दान ले ली आपकी। संस्कृत में लिख के दे दिया, पता नहीं क्या, अब हम प्रॉपर्टी तुम नाम करिश्यामि। इसलिए पता लेना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा है, पहला वर्ष का मतलब मैं पढ़ता हूँ। जिनका सर्वेश्वर सचिदानंद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है सचित आनंद, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, तो गोपाल रूप भगवान का
की यहाँ वर्णन है, इनको आप देख भी सकते हैं बीच बीच में। तो इनके कुंडल जो है वो उनके मकरकर कपोलों, कपोलों मतलब ये गाल, इसके ऊपर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभा मयमान है। तो कहाँ रहते हैं भगवान? गोकुल में। दही भांड फोड़ने के कारण, दही की हांडी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, जिसको आपने सुना, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़ कर पकड़ लिया, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। माँ के हाथ में लठिया देखकर रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमर से मसल रहे हैं, उनके नेत्र भय से विफल है, रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके तिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भाव के प्रति ये तत्व प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूपी वैकुंठ में शाश्वत जीवन और नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका ये वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। तो भगवान के बाल घुंघराले हैं और माँ यशोदा से उन्हें चूम रहे हैं, और आपके ओठ बिल फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का ये सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे, मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों का नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना दिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपने प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए, यही मेरी एकमात्र आग्रह है, मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ, आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, और अनंत लीला करने वाले आप परमेश्वर को भी मेरा प्रणाम है। तो इसमें एक चीज जो हमने आपको वर्णन नहीं किया, नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त करने वाले भगवान। तो इसमें एक सेकंड में आपको बताता हूँ क्या हुआ, इसका मतलब है नल कुबेर और मणिग्रीव जी, कुबेर जी के दो पुत्र थे जो कि वस्त्रहीन अवस्था में जल में स्नान कर रहे थे, और वहां से नारद मुनि आए तो उन्होंने देखा कि स्त्रियों के साथ में कुबेर मतलब बहुत पैसा, और बहुत पैसे के होने के कारण बोलते का रईस बाप की बिगड़ी वाला है। तो नलकुबेर और मणिग्रीव दोनों जल क्रीड़ा कर रहे हैं, और किसी के आने के बाद नारद मुनि जैसे भक्त के आने के बाद भी उठकर प्रणाम नहीं कर रहे, हरे कृष्णा ही बोला। तो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम तो कितने अब बेकार हो जो कि मेरे आने के बाद तुमने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, जाओ मैं तुमको श्रापित करता हूँ। क्या? कि तुम जिस प्रकार से नग्न अवस्था में हो, तो भगवद गीता कहती है आप जैसा आज आचरण करेंगे वैसा अगला शरीर मिलेगा, मगर आज आप कम वस्त्र पहनने के आदि है तो अगला शरीर मिलेगा पेड़ का, फिर आप खड़े रहेंगे अमेरिका की ठंड में बिना कपड़ों के, आज छोटे कपड़े पहनते हो फिर बिना कपड़े के। जिन व्यक्ति को खाने पीने में भोग लगाने की इच्छा नहीं होती, कहते कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, तो उनको अगला शरीर किसका मिलता है? सुअर का, कुछ भी खा लेते हैं। जिसको सोने की बहुत आदत है तो 10 घंटे कम से तो अपना गुजारा चलता नहीं, तो उसको अगला शरीर मिलता है किसका? बेयर का, भालू का। तो इस तरह से भगवान हर इच्छा को पूरी करते हैं, वो आपके फ्रेंड है ना, सुहृदम सर्वभूतानां। तो ये दंड नहीं है, भगवान कृपावश कि चल पहले तो आराम से सोने की इच्छा पूरी कर ले, फिर आराम से आ जाइए मेरे घर, कोई जल्दी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी क्या करना, अभी तो जीना बरसों और काल करे सो परसों, हम परसों कर लेंगे जो कल करना है, तो इसलिए भी जल्दी जल्दी नहीं करते हैं लोग। तो फिर उन्होंने श्राप दिया कि तुम क्या बन जाओ? वृक्ष बन जाओ।
तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव थे, इन्हें यमला अर्जुन वृक्ष बनाया गया। और फिर जब ये यशोदा मैया ने उनको बांध दिया था, तो ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, इन्होंने प्रार्थना करी नारद मुनि से, आपने हमें श्राप तो दिया, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम पर इतनी कृपा करता हूँ कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। तो फिर द्वापर युग में जब भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं आते हैं, तब से भगवान जब उखल बंधी होती है तो भगवान उस उखल को लेकर चलते हैं, और ये जो अब यमला अर्जुन वृक्ष थे इनके बीच से निकलते हैं, और निकलने से उनकी जो पीछे की उखली है वो फंस जाती है। लेकिन भगवान 3 साल से कम उम्र के, इतनी ताकत भगवान नहीं हो सकती है कि इतनी जोर से उसको खींचा कि दोनों के दोनों वृक्ष जमीन से निकल कर गिर गए। जब गिरे तो पूरी इतनी जोर से आवाज हुई, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, सबने बोला क्या हो गया, 2 वृक्ष लाला पे गिर गए। तो फिर उसने देखा गया कि 2 पुरुष निकले, मणिग्रीव और नलकुबेर, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आपने बड़ी कृपा करी, आपके टच हो जाने से हम पूर्ण शुद्ध हो गए, और अब जीवन भर सदा आपके नामों का स्मरण और चिंतन करेंगे, और कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, सदा संत पुरुषों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये भगवान ने लीला करी, और लोगों ने क्या सोचा, लाला के ऊपर पेड़ गिरे हैं, तो वो लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान अपनी आवरणात्मक शक्ति से आवरण कर देते थे माया का, योग माया का, ताकि लोग समझ ही नहीं पाए कि कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण चाहते नहीं कि लोग मुझे भगवान माने, वो चाहते हैं तुम मुझसे प्रेम करो, क्योंकि अगर भगवान मानेंगे तो घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे 1 नंबर से खरीद के, और उसके अंदर लाइट लगाएंगे बड़ा सा बल्ब, और उसमें सुबह सुबह चिरौंजी दाना रख देंगे या मिश्री रख देंगे, और बोलेंगे हमारे घर तो गोपाल सेवा चलती है, गोपाल जी बैठे मंदिर में, मकड़ी भी चल रही है, जाला भी चल रहा है, लाइट का बल्ब लगा हुआ है, और बच्चे के लिए रोज नए कपड़े, रोज नया खाना और प्रसाद लग रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे भगवान नहीं बनना, मुझको क्या बनना है, लाला बनना है। इसलिए वृंदावन लीलाओं में भगवान सबको भ्रमित रखते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान मानना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूँ। तो ये भगवान की अचिंत शक्तियां जिनको हम समझ सकते हैं इन लीलाओं के द्वारा, तो हम दामोदर इष्ट का ज्ञान करेंगे, करताल बजाएंगे, दामोदर इष्ट मैं पहले बोलूंगा फिर आप पीछे से दोहरा सकते हैं, ठीक है। नमामि शरणं सच्चिदानन्द रूपम्, नमामि शरणं सच्चिदानन्द रूपम्, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्, नमामि शरणं सच्चिदानन्द रूपम्, सत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्, नमामि शरणं सत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलदभवानम्, परं विश्वमात्यन्तो दूरतगुप्तम्, I'm
इंटेलिजेंट है और कितना उनको ज्ञान है आपने देखा ही है। तो हम प्रभु जी से उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह से आते रहेंगे हमारे पास और हमें बहुत कुछ भगवान के बारे में बताते रहेंगे और हम ताकि हम वास्तव में भगवान का दर्शन कर सके। तो हम प्रभु जी के लिए 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा